بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام و درود و محمد و اہل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے، بہت سے اسلامی ملکوں میں آج بھی یعنی عید کا جشن منایا جا رہا ہے، اگرچہ عید کی نماز کل ادا ہو گئی لیکن آج بھی عید کی خوشیاں، عید کا جشن جاری ہے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید خوشیوں کا تہوار ہے، عید شکرانے کا تہوار ہے، عید مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عید ہے۔ عید ایسا تہوار ہے جب لوگوں کے دل آپس میں صاف ہو جاتے ہیں، کینہ عداوتیں اور دشمنی گلے ملنے کے بعد دور ہو جاتی ہیں۔ عید وہ ہے جب امن اور خوشحالی کا جشن منایا جاتا ہے۔ عید وہ دن ہے جو رفاقت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ عید وہ دن ہے جب ہر گھر میں چھوٹا بڑا، بچے بوڑھے جوان سب خوشیاں مناتے ہیں، اور عید کا پیغام بھی یہی ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کل عید کے دن اور اس سے پہلے جب لوگ یا پورا ملک عید کی تیاریوں میں مصروف تھا، تو کچھ دہشت گرد عناصر پوری قوم کو کچھ دوسرا ہی پیغام دینا چاہتے تھے۔ اس سے ایک دن قبل دہشت گردوں نے پولیس لائن میں ایک بہت بڑا واقعہ کر کے 38 کم از کم پولیس افسران اور اہلکاروں کو جاں بحق کر دیا، اور خود عید کے دن کوئٹہ کے مضافاتی علاقے مشرقی بائی پاس میں جامع فاروقیہ کی مسجد میں اس وقت نمازیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی جب وہ اللہ کے حضور سر بہ سجود ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ اللہ کے نام لیواؤں پر ان لوگوں نے حملہ کیا جو خود کو اللہ کا نام لیوا کہتے ہیں اور خود کو سب سے بڑا موحد کہتے ہیں، تو اللہ کے نام لینے والوں پر ان لوگوں کی طرف سے جو خود کو اللہ کا نام لینے والا کہتے ہیں حملہ کس بات کا پتہ دیتا ہے کہ آیا یہ حملہ ور اللہ والے ہیں یا غیر اللہ والے ہیں۔ بہرحال حالات کس سمت جا رہے ہیں اور انتظامیہ اس سلسلے میں اب کیا سوچ رہی ہے اور قوم کس نقطے پر پہنچی ہے، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
پاکستان میں عید فطر پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی، لیکن دہشت گردوں نے اس دن بھی قوم کی خوشیوں کو مٹی میں ملانے میں اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جمعے کو کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعات کا سلسلہ جاری رہا اور عید کی نماز پڑھ کر باہر نکلنے والوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دارالحکومت اسلام آباد میں مضافاتی علاقے میں ایک شیعہ مسجد پر خودکش حملے کی کوشش سیکورٹی فورس نے ناکام بنا دی۔ کوئٹہ میں اس سے قبل بھی لگاتار دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، جن میں عام شہریوں کے ساتھ ہی سیکورٹی عہدیداروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے حملوں کی نوعیت پر اگر غور کیا جائے تو بہت عجیب لگتا ہے کہ پاکستان میں عرصے سے سرگرم اور پوری قوم کے لیے درد سر بن چکے دہشت گرد، جو خود اسلام کا محافظ اور ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، حملوں کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں ان کے حملے میں زیادہ سے زیادہ انسانی جانیں تلف ہوں۔ نماز جنازہ، مسجد میں ہونے والے با جماعت نماز جیسے مواقع ان دہشت گردوں کی نظر میں بڑے سنہری مواقع ہوتے ہیں جب وہ آسانی سے زیادہ لوگوں کی جانیں لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے اسلام نواز گروہ ہیں جو صہیونیت اور استعماری طاقتوں سے تو کبھی خفیہ اور کبھی اعلانیہ طور پر مذاکرات اور سودے بازی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جان لینا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ دہشت گردانہ حملوں کے واقعات سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ ان درندہ صفت لوگوں کی نظر میں شیعہ اور سنی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ان کے بیشتر حملے شیعوں کو نشانہ بنا کر انجام دیے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے حملوں میں سنی مسلمان بھی نشانہ بنتے ہیں۔ یہی نہیں، یہ دہشت گرد تنظیمیں قومی مفادات پر حملے کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ ان تنظیموں نے طاقت کے ذریعے ہمیشہ اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کی ہے، اور اگر کبھی انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہے تو وہ بھی وقتی ضرورت کے تحت تھی، اور اس میں کہیں بھی انہوں نے پرام راستہ اختیار کرنے کا عندیہ نہیں دیا۔ اس صورتحال کے مدنظر پاکستان کی حکومت اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہی ساتھ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تنظیموں کے سلسلے میں واضح موقف اختیار کریں۔ یہ تنظیمیں مذہبی تعلیمات کی غلط تفسیر اور تشریح کے ذریعے اپنے غیر انسانی اقدامات کو عین عبادت ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بنابراین علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں آگے آئیں اور اس حقیقت کو مزید نمایاں انداز میں پیش کریں کہ انتہا پسند تنظیمیں اپنے اقدامات سے نہ صرف یہ کہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہی ہیں، بلکہ پاکستان کو بد امنی اور تنزلی کی کھائی میں دھکیلنے کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی استعمالی طاقتوں کی سازشوں کو جامع عمل پہنانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ استعمالی طاقتیں ساری دنیا میں اسلام کو تشدد پسند اور دہشت گردانہ مذہب ظاہر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ مغربی ممالک کے سیاسی حلقے اور تشہیراتی ادارے گناہ گن حربے بروئے کار لاتے ہوئے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ساری دنیا میں عوامی حلقوں میں اسلام کی جانب بڑھتا رجحان در حقیقت مغربی ممالک کے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے۔
جان ناظرین، یہ کیسے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کی جان لینا ہی اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں عالم امور کے ماہر جناب تنویر حسین صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی تنویر صاحب، میں نے ایک سوال کیا، اس کا جواب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیسے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کی جان لینا ہی اپنا بنیادی اور اولین فرض سمجھتے ہیں۔
افسوس کی بات ہے جی کہ اسلام کے لبادے میں کچھ قوتیں اس طرح کام کر رہی ہیں کہ وہ پورے پاکستان کے عوام کو اور پورے اس ملک کے شہریوں کو، مظلوم جو عوام ہیں، جو پرامن لوگ ہیں، ان کی قتل و غارت میں یہ مصروف ہیں۔ یہ بڑا ایک پیچیدہ سا بھی سوال ہے اور آسان سا بھی، کہ جس سوچ کی بنیاد 1980 میں رکھی گئی تھی افغانستان میں، وہ سوچ اپنی پوری طرح پوری آخری شکل میں اب سامنے آ کر پاکستان کے کونے کونے میں اس کے جو ہے علامات دکھائی دے رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ غالباً ولی خان مرحوم، جو عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ تھے، 1980 میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اور یہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں، یہ سارے مل کر روس کو توڑ دیں گے، شکست دے سکیں گے، لیکن اس کے بعد کے جو اثرات ہیں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس خطے کی صورتحال کیا ہوگی۔ سیاسی طور پہ ولی خان ایک بڑے، ان کا سیاسی تدبر تھا اور وہ دور اندیش بھی تھے۔ آج جب میں ان کی یہ بات دیکھتا ہوں پاکستان کے ڈالتوں تو ان کی بات سوچتی نظر آتی ہے، بات تھے اس سوچ کو پروان چڑھایا گیا اور اسلام کو صرف اور صرف جہاد کے روپ میں طبیعت کا راستہ بنایا گیا، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں روس کو شکست دی گئی۔ وہی جو سوچ ہے وہ اب جو ہے عام زندگی میں بھی، جنگ کے علاوہ امن کے حالات میں، اسی ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ افغانستان میں تربیت کا ایک عمل شروع کیا تھا، وہ تربیتی عمل ابھی تک جاری ہے، اور اب ان کے نزدیک اس طرح وہ قوتیں یا وہ مسلمان ممالک کے شامل ہو گئے ہیں جن کی اپنی ایک فرقہ واریت، یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کی مذہبی اور مسلکی سوچ ہے، اور وہ ان کے اندر پوری طرح پنپ چکی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو بھی اسلام کی شکل ہے وہ درست نہیں ہے، لہذا ان کے خلاف جو ہے جہاد کرنا چاہیے، چاہے اس میں اہل تشیع ہوں یا اہل سنت کے کچھ مکاتب فکر ہوں، بریلوی مکاتب فکر ہوں۔ उनके नज़दीक जो उनकी अपनी सोच के खिलाफ है वो सारे के सारे लोग उनको वो गैर मुस्लिम तसव्वुर करते हैं और उनको कहते हैं कि इनके खिलाफ जिहाद ज़रूरी है। और यही बात है कि एक आदमी जब जान देने के लिए तैयार होता है अपनी जिस्म के साथ जैकेट पहन के आता है तो वो तो तकबीर का नारा बुलंद करके ये सारा कुछ कर रहा होता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो ट्रेनिंग सेंटर, वो सोच जो जिसकी बुनियाद 1980 में रखी गई थी, उसके क्या नतीजे हमें नज़र आ रहे हैं कि वो लोग समझते हैं कि जो कुछ हमारे पास है यही इस्लाम है और इसके अलावा बाकी तमाम के तमाम जो मसालिक हैं वो उनके पास इस्लाम नहीं है। और वो दूसरा ये है कि अमेरिका और बरतानिया के ये मुल्क जो हैं एजेंट है, लिहाजा इनके खिलाफ जहाद जो है वो ज़रूरी है। अब उस जहाद को समझ नहीं पा रही कि पाकिस्तान के अवाम के लिए भी एक मसला बन गया है कि क्या ये मुसलमान है या नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी एक कन्फ्यूजन मौजूद है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर भी एक कन्फ्यूजन मौजूद है कि क्या मुज़ाकरात करने चाहिए या इनके साथ नहीं करने चाहिए। ये वो तालिबान वो जो खुद को आप मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, खुद को ये समझते हैं कि हमारे पास जो इस्लाम है यही इस्लाम की असली शक्ल है, वो आप पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक वबाल जान बन गया है। अब हालत ये है कि इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी भी शहर में मस्जिद में जाते हुए लोग डरते हैं, नमाज पढ़ते हुए डरते हैं, शहरों में खरीदारी के लिए जाते हुए डरते हैं, तमाम जगहों पे पुलिस की चेक पोस्ट ये सारा कुछ होने के बावजूद आम आदमी स्ट्रेस का शिकार हो चुका है, हर तरफ अजियत का एक जो है सूरत हाल बनती जा रही है। और अब सूरत हाल ये है कि इन इस सारी जो 30 साल का सफ़र इन्होंने तय किया है, अब मजीद 30 साल आपको और चाहिए होंगे कि इनको वापस उसी डगर पे वापस लाने के लिए उसी रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा कि किस तरीके से एक तरबियती अमल के जरिए इनको रोका जा सके। कानून सख्त करने से, सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त करने से फितरत या तरबियत जो है वो उस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। ये जब तक इन लोगों की सोच में, इनकी तरबियत में कोई खास एक प्लानिंग के तहत अमल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मैं समझता हूँ अगर ये मसलकी हवाले से बात हो तो तब। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे फैक्टर इनके पीछे अब शामिल हो जो चुके हैं, पाकिस्तान एक जो है एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पर बहुत सारे ममालिक के मफादात भी आ चुके हैं और वो अपने मफादात के लिए भी इन लोगों को इस्तेमाल करें। तो आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का शहरी खुद को अदम तहफ़ गैर
जी तनवीर साहब मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में।
जिंदगी यानी अपने अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इंसान के जो 15-16 घंटे होते हैं उसमें कई घंटे इस मौजू पर बात होती है कि हमारी जिंदगियाँ कितनी गैर महफूज हो गई हैं। बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनके लिए परेशानी होती है, आप सुबह जाते हैं वापसी पे रास्ता नहीं मिलता आपको, ट्रैफिक बंद हो जाती है, सिक्योरिटी के खतरा हो गया है।
बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया
जी। पूरी कौम
मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में। चलते हैं लंदन स्टूडियो जहां पर मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर कैसर इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
कैसर इमाम साहब, दहशतगर्दों ने ईद और ईद से पहले यानी ईद के मौके पर दहशतगर्दी और बर्बरियत का इर्तिकाब करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्या पैगाम देना चाहे आपके ख्याल में?
देखिए मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना ईद मनाने का एक तरीका ईजाद किया है जो मुसलमानों में तो खैर नहीं है, कभी ये चोरों और डाकुओं में हुआ करता था कि वो इस किस्म के मौकों पर इस किस्म के कारनामे किया करते थे। मैं समझता हूं कि इसके कलाबे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों तक नहीं महदूद बल्कि इसमें पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सारी की सारी सिविल भी और फौजी भी, वो भी इसमें बराबर की शरीक हैं। इसलिए कि अब तक 40-45 हज़ार अफराद जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं लेकिन किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, किसी को सजा नहीं दी गई, बेशुमार असला पकड़ा गया है लेकिन इसके बावजूद ये कभी नहीं बताया गया कि ये असला किसका था, किसने भेजा था और कौन इसको इस्तेमाल करने वाला था। पाकिस्तान की किसी अदालत में इस किस्म का कोई वाकया नहीं सामने आया कि जिसमें किसी असला बरामद करने वाले या दरामद करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। मैं समझता हूं कि यह काम सिक्योरिटी एजेंसीज का है कि वो ये पता चलाएं कि कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन कौन सी तंजीमें मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में 200 के करीब तंजीमें ऐसी हैं जो इस किस्म का काम कर रही हैं, उसमें बाज़ तंजीमें जो हैं वो ज़्यादा काम कर रही हैं इस किस्म का, बाज़ कम सरगर्म हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी तंजीमें इस किस्म का काम कर रही हैं इंतजामिया को पूरी तरह से उनका इल्म है और वो अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, मौसर कार्रवाई नहीं कर सकती। सो मेरे ख्याल में हम सिर्फ तालिबान को या दहशत गर्दों को कोई इल्जाम देने से पहले ये जरूर सोचें कि आखिरकार ये सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान की क्या कर रही हैं। बलोचिस्तान के वजीर आला ने तो यहां तक कह दिया कि इन सिक्योरिटी एजेंसी पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अगर हुकूमत का इख्तियार उन पर नहीं है तो फिर इख्तियार किसका है, और वो कौन सी गैर मुल्की या मुल्की ताकतें हैं जिनके खौफ से या डर से या उनके लालच की वजह से ये सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो कुछ नहीं कर रही। सो मेरे ख्याल में जो कार्रवाई मुशर्रफ के दौर में और उससे पहले जियाउल हक के दौर में शुरू हुई थी फौजी हुकूमत तक जिसका मैं समझता हूं कि जरदारी साहब ने भी ये खास तौर पर कहा कि हुकूमतें जो हैं वो इसमें मुलव्वस रही हैं अपने मफादात के लिए। सो मेरे ख्याल में ये बातें जो हैं इनको सामने रखना चाहिए कि हुकूमतें क्या कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हुकूमत का काम है कि वो ठीक करे, एजेंसियों का काम है ठीक करे। सो मेरे ख्याल में अगर वो ये काम नहीं कर रहे तो वो बराबर के शरीक हैं इस दहशतगर्दी में। और फिर यही नहीं, ये सिर्फ मसालक का मामला नहीं है, ये सिर्फ अकायद का मामला नहीं है, इसमें सियासी पेचीदगियां भी बहुत हैं। दूसरे मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान में आकर अपनी जंग लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बातें जो हैं वो हुकूमत को मालूम है, जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी मालूम है, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और अवाम से सब कुछ छुपाया जा रहा है।
बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बिल्कुल इल्म नहीं है कि कौन काम कर रहा है।
जी तनवीर हुसैन साहब, जी आपने अपने गुफ्तगू में कहा कि 30 साल से जो ये सिलसिला चल रहा है इसको खत्म करने के लिए मजीद 30 साल दरकार होंगे, यानी इनकी तरबियत करनी होगी और इनको समझाना होगा, एक कल्चर बनाना होगा। तो जाहिर है ये तो 30 साल है, 30 साल में ना मालूम कितनी जाने खुदा ना खास्ता और ज़ाया हो सकती हैं। क्या आप नहीं समझते कि फौरी तौर पर इस सिलसिले को मुनक़ता करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि उस सर चश्मे को बंद किया जाए या उस रास्ते को मुनक़ता किया जाए जहां से इन दहशतगर्दों की माली और असलाह जाती फंडिंग हो रही है?
देखें, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जिन ममालिक के मफादात हैं, देखें ना अभी ताज़ा जो सूरत हाल हम अगर देखें ना क्वेटा और ये जो हुई है, ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात में गहराई आई है, डेप्थ पैदा होती जा रही है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से जो मंसूबे शुरू किए गए हैं, गवादर का मसला हुआ है। अब तो सारी सूरत हाल इस पस मंजर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ममालिक के इंटरेस्ट नहीं है कि चाइना यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से अपनी एक इंटरेस्ट डेवलप करे। जाहिर है जब चाइना के पाकिस्तान के साथ इतने गहरे रवाबित होंगे तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी चाइना उसमें हेल्प करेगा, और खुसूसन अफगानिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो चाइना अपने इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था कि ग्वादर पोर्ट चाइना के हवाले कर दी गई और वहाँ पे चाइना आके बैठ गया, और उसकी वजह से वहाँ जो अफगानिस्तान अपने बलूचिस्तान के अंदर किसी भी शक्ल में जो बगावत का अंसर था या अलहदगी या जिस भी हवाले से जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उसमें किसी हद तक पाकिस्तान को मदद मिल सकेगी कि उसको काउंटर कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नई डेवलपमेंट इसमें देख रहे हैं वो उसका एक पस मंजर ये भी है। दूसरी बात जो आपने की थी कि मैंने पहले अर्ज किया था कि एक पूरा 33 साल का अरसा लगा है जो अब ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और जोर के ऊपर मुल्क के अंदर मजहबी नजरियात जो मुसलत करने की कोशिश की जा रही है, ज़रूरत इस बात की है कि आप जब्तों से नहीं रोक सकते, आप कानून साजी से नहीं रोक सकते। इसमें पाकिस्तान के अंदर तमाम उलमा जो हैं उनको हुकूमत को चाहिए जो सरकारी मसाजिद में है, दूसरे मसाजिद में ज़िली सतह पर एक पूरा एक पॉलिसी मुरतब करे, एक उसमें इंटेलेक्चुअल्स को शामिल किया जाए, दानिश्वर लोगों को शामिल किया जाए और एक ऐसी तरबियती प्रोसेस शुरू किया जाए और इन उलमा को हुकूमत साथ मिलाए, इनको साथ रखे, क्योंकि इनका बराह रास्त लोगों के साथ अवाम के साथ एक रहता है। तो कम अज़ कम इन ये उलमा इस्लाम का असल जो चेहरा है पाकिस्तान के अवाम को कम अज़ कम दिखा सकें। जब उनके सामने असल चेहरा आएगा तो उनको खुद बखुद अंदाज़ा हो जाएगा जो तालिबान का इस्लाम है जिन इलाकों से आ रहा है। मुझे आप बताएं फाटा में इन एजेंसियों में कौन सी यूनिवर्सिटियाँ कायम है, कितने वहाँ लोग दानिश्वर वहाँ पर लोग पैदा हो रहे हैं और पढ़ लिख रहे हैं, गुर्बत का ये आलम है कि मैं अगले दिन मेरी एक जो है पख्तून भाई से बात हो रही थी तो इस्लामाबाद में, तो वो मुझे बता रहा था कि मेरा भाई बेरोजगार था, 25,000 रुपये माहाना पे तालिबान के साथ शामिल हो गया और 25,000 रुपये उसको तनख्वाह मिलती है। अब जब गुर्बत होगी उस मुल्क के, वहाँ के लोगों को मुतवादर रोजगार नहीं होगा तो गुर्बत होगी तो जाहिर है वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके पास तो वसाइल हैं। अब अगर ये जो लोग पैसे, अभी जो मैं बात अगर करूं डेरा इस्माइल खान में जो जेल का से तोड़कर वो 200-250 के करीब लोग कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपया खर्चा आया तालिबान का। अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जाहिर है ये अमरीका दे रहा है और अमरीका के जो दूसरे साथी हैं वो दे रहे हैं। सऊदी अरब का नाम लिया जा रहा है, वो भी इन मसलकी तौर पे सरपरस्ती कर रहा है। इसके अलावा और ममालिक भी शामिल हैं। अभी जो अपने शाम की सरहद पे जो जंगजू भेजे गए हैं तालिबान, अलकायदा नाम की नई तंजीम जो बनाई गई है वजीरिस्तान में, उसका ट्रेनिंग कैंप है। सऊदी अरब, यमन, कुवैत, ये सारे लोग उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं और ये तुर्की के जरिए जो है कराची से तुर्की और तुर्की से वहाँ लोग भिजवाए गए। तो इन ममालिक का इन ट्राइबल एरिया में एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया है और जब इनको ज़रूरत पड़ती है किसी तरह के जंगजू लोगों की तो ये लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा करते हैं और वहाँ से जंगजू जहाँ ज़रूरत होती है वो काम करते हैं। लोग कहते हैं तालिबान अमरीका के मुखालिफ है, कहाँ अमरीका के मुखालिफ है, अपने कजाफी साहब लेकर गए थे मरहूम यहाँ से कि वो अमेरिका के मुखालिफ हैं और वही लोग जो तालिबान थे वो कजाफी साहब के खात्मे का सबब बने। इसी तरह आप ये लोग जो पाकिस्तान में अमेरिका के मुखालफत कर रहे हैं, यही लोग अमेरिका की हमायत में शाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा पैसा इनको मिल रहा है और जो लोग ये कर रहे हैं वो पूरा जोर इस वक्त लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो अपना ताकत के बलबूते पर जो भी सियासी मजहबी नजरियात हैं उनको मुसल्लत करें। नतीजा मैं फिर वही बात आज करूँगा कि अब एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की सारी सूरत हाल को सामने रखें, मुल्क के दानिश्वरों को इकट्ठा करें, एक लॉन्ग रन पॉलिसी मुरतब करें। शॉर्ट टर्म पॉलिसियां भी मौजूद होती हैं लेकिन मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे इस पर रुकावट हो सकती है क्योंकि ये पेनिट्रेट करते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, शहरों के अंदर जो है एक सोच जो है वो मौजूद है। अगर उनके आमी नहीं है तो उनके लिए नरम गोशा जरूर रखते हैं तालिबान के अरे। तो दूसरा ये इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती रही है उनको भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रांसपेरेंसी लाएं, अपने काम में ट्रांसपेरेंसी लाएं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की अहमियत बढ़ाएं। क्योंकि ये तालिबान ये कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, ये एक अच्छा निज़ाम नहीं है और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि बहुत सारी करप्शन की जो इशू सामने आते रहे। अब जब आप चाहते हैं कि एक मुतबादल बेहतर निजाम तो इसके अंदर एक खूबसूरती लाएं, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाएं।
लेकिन तनवीर साहब फर्ज करें तनवीर साहब
और ये कमिटमेंट करके आइए और तनवीर साहब करते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगी ताकि लोगों का डेमोक्रेसी पे एतमाद हो, एक अवामी नुमाइंदगी के जो प्रोसेस है उस पर एतमाद हो ताकि मुल्क के अंदर वो लोग जो अपनी राय या मजहब के नाम पर एक ऐसा निजाम के जिसके अंदर जी हम इस्लाम नाफज करेंगे और ये सारी करप्शन खत्म होगी उसका कोई रास्ता रोका जा सके।
जी तनवीर साहब मैं आपसे मुख्तसर जवाब चाहूंगा अगरचे मुझे सवाल करना था लंदन में, लेकिन आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी लाएं, शफाफियत लाएं, जमहूरी जो सिस्टम और हुकूमतें हैं, फर्ज कर लें कि अगर कहीं पर कोई कोताही हो रही जमहूरी हुकूमत से तो क्या ये इस बात का जवाब बनता है कि दहशतगर्द अनासिर नमाजियों को, बेगुनाह शहरियों को बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों को अपनी बर्बरियत और सफाकियत का निशाना बनाएं?
देखिए जी ये तो कोई ना दुनिया का कोई भी मजहब और ना ही कोई निज़ाम, ना ही कोई सियासी निज़ाम और ना ही कोई मजहबी जो है निज़ाम है वो इसकी इजाज़त देता है कि वो पुरमन शहरियों पर या जो नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह की इबादत कर रहे हैं उनको निशाना बनाएं। ये तो किसी सूरत जो है इसको कोई आदमी, कोई भी बाशऊर, कोई भी महजब माशरा या शख्स जो है, कोई भी इंसान जो है इसकी हमायत नहीं कर सकता। ये तो सरासर एक दहशतगर्दी है, जुल्म है और इसके खिलाफ कयाम
बहुत शुक्रिया आपका
बिल्कुल होना चाहिए। हमेशा जालिमों के खिलाफ जो है कयाम और मजलूम की हमायत जो है इस्लाम की बुनियाद रही है
जी।
मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि इस मुल्क के
बहुत शुक्रिया
जो
मैं फिर आज उनका आपकी खिदमत में जवाब आपका मिल गया मुझे। चलते हैं लंदन स्टूडियो कैसर इमाम साहब। अभी तनवीर साहब फरमा रहे थे कि उलमा को, अमायदीन को और मजहबी स्कॉलरों को जो है आगे आना चाहिए और खुलकर जो है इस मौजू पर बात करनी चाहिए। एम क्यू एम की तरफ से आज ही एक बयान आया और माजी में भी इस तरह के बयानात और मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ये कहा जाता रहा कि जो पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातें उनकी तरफ से इस तरह के दहशतगर्दाना वाकयात पर कभी खुलकर स्टैंड नहीं लिया गया और मजहमती बयान सामने नहीं आया और कभी भी उन जमातों ने इन ग्रोहों से अपनी अलहदगी का ऐलान नहीं किया और बरात का ऐलान नहीं किया, तो आप क्या कहते हैं इनके किरदार पर?
मैं समझता हूं कि ये बात बड़ी हद तक सही है कि पाकिस्तान के उलमा ने और मुख्तलिफ मजहबी जमातों ने दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसके मुतल्लिक ये साफ साफ कहा जा सके कि वो उनकी सचमुच मुखालफत कर रहे हैं। ये हो सकता है कि किसी डर या खौफ की वजह से हो या किसी लालच की वजह से हो और बाज़ औक़ात ये मसलक की बिना पर भी होता है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं फिर वही बात अर्ज करूंगा कि हम ये बात तो अक्सर करते हैं कि कोई जुर्म कैसे सरजद हुआ और कौन किस किस्म के लोग वो कर रहे हैं, लेकिन हम उसके तदारक के लिए कोई काम नहीं करते, बजाय इसके कि हम उलमा से ये अपीलें करें कि भी वो अपने अपने इलाकों में इस्लाम का सही नक्शा पेश करें। हमें चाहिए कि जो उलमा इस्लाम का सही नक्शा पेश नहीं करते, जो मुखासमत पैदा करते हैं, जो लोगों में दूरी पैदा करते हैं, जो मजहब को बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलाएं, उनके खिलाफ कानून साजी करें। हमें उनकी पहले मुश्कें कसनी चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको कटहरे में लाया जाए। कानून साजी ना हुकूमत कर रही है, ना अवाम कर रहे हैं, ना लीडर कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा। सिर्फ इस बात पर बहस हो रही है कि भी ये कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, लेकिन ये कि उसको रोका कैसे जाएगा इसके मुताबिक कुछ नहीं किया जा रहा, डर की वजह से, लालच की वजह से।
जी तनवीर हुसैन साहब, बहुत से हलके, अलबत्ता बहुत से तो नहीं, बाज़ हलके ये कहते हैं, जैसा कि अभी इससे कबल वाली गुफ्तगू में रिजवान कासिर इमाम साहब ने कहा कि दूसरे ममालिक अपनी जंग वहां पर लड़ रहे हैं, यानी प्रॉक्सी वार का नाम दिया जा रहा है। अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि प्रॉक्सी वार है, तो एक सवाल ये पैदा होता है, प्रॉक्सी वार ये होता है कि जब ये होती है कि दोनों तरफ से लोग मारे जाएं, लेकिन देखा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में एक ग्रोह है जो सिर्फ और सिर्फ एक मसलक के लोगों को मार रहा है, या फिर सिक्योरिटी एजेंसियों, पुलिस अहलकारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों, उनको निशाना बनाता है। खुद जो हमलावर ग्रुप है उसके खिलाफ ना तो कोई हमला करता है, ना उसके खिलाफ किसी ग्रोह, दूसरे ग्रोह की तरफ से हमला होता है, तो ये कौन से प्रॉक्सी वार आपके ख्याल में हुई?
देखिए जी, मैं अर्ज करूं कि ये जो ग्रोह सब कुछ कर रहा है उसकी पुष्पनाई है और आगे से आवाम जो हैं वो मौजूद हैं, वो खुद इसका निशाना बन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कैसर इमाम साहब ने बात की थी कि सिक्योरिटी की जो फोर्सेस हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस सारे सूरत हाल का तदारक करें, आवाम तो सिक्योरिटी की तरफ देख रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ देख रहे होते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज का जो सूरत हाल है वो उसके पस मंजर में जो बुनियादी चीज़ होती है वो हुकूमत की जो पॉलिसी होती है उसको सामने रख के करते हैं। अभी माजी में हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी, तो बड़ी क्लियरली कमिटेड होकर वो तालिबान के खिलाफ उन्होंने मौकफ इख्तियार किया हुआ था और वो स्टैंड किया हुआ था और वो उस पर बशीर बलोर शहीद हुए, मियाँ इफ्तखार हुसैन के बेटा एक ही था उसको शहीद किया गया, तो उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ, एक सियासी तदब्बर के साथ, एक के उन तालिबान के खिलाफ या उस ग्रोह के खिलाफ जो आवाम पर हमला आवर होता है, सिक्योरिटी फोर्सेज के इदारों पर हमला आवर होता है, पाकिस्तान की रिट को चैलेंज करता है, हुकूमत की रिट को चैलेंज करता है, उसके खिलाफ एक बड़ा वाज़ेह मौकफ लेकर सामने आए थे। पिछले दौर में काफ़ी कोशिश की गई, बड़ा क्लियरली हुकूमतों ने मौकफ अख्तियार किया। अब भी लोग इस इंतज़ार में हैं कि मौजूदा हुकूमत और KPK में जो इमरान खान की हुकूमत है वो इस हवाले से क्या मौकफ अख्तियार करती हैं। जब तक हुकूमतों की तरफ से वाज़ेह पॉलिसी नहीं आती, कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं आती, कोई फैसला सामने नहीं आता कि इनके बारे में क्या रोल प्ले करना है, तो ये लोग तो इसी तरह करते रहेंगे और इनकी रुकावट जो है कोई नहीं बनेगा। अभी आप देखें कि डेरा इस्माइल खान से और बड़े आराम से वो 100-150 किलोमीटर का फासला तय करके आए हैं, वहाँ पे वो कैदियों को शनाख्त करके छुड़ाकर लेकर चले गए हैं, देखें ना, अगर वो आ गए थे तो वापसी पे तो रोका जा सकता था। बहुत सारी एजेंसियां इदारों को उस वक्त खबर हो चुकी थी कि ये सारी कुछ हो रहा है, और वो बताया जाता है कि 2-3 घंटे का प्रोसेस था, तो इसको रोका जा सकता था। लेकिन सिक्योरिटी के इदारों के दरमियान क्या इश्यूज़ हैं, क्यों क्या मुश्किलात थी, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, क्या मामला थे, नतीजा बहरहाल ये जरूर निकला कि वो आसानी से सारा कुछ करके चले गए। अब इस सारी सूरत हाल में तो एक तरफा ही लड़ाई जो है, एक तरफा हमले ही हो रहे हैं। जवाबी तौर पे तो अभी तक तो मुझे नहीं नजर आता कि कोई एक्शन प्लान अभी तक हुकूमत की तरफ से नहीं आया कि क्या किया जाएगा इनके खिलाफ। आवाम को भी साथ लेना होता है। देखें ना, इस तरह की जंगें ना सिर्फ हुकूमत अपनी पॉलिसी बल्कि आवाम के तौर पे भी लड़े। पहले तो हुकूमत को अपना वाज़ेह मौक़िफ जो है ना देना चाहिए, क्या इनके खिलाफ कोई पॉलिसी या मंसूबाबंदी करनी होगी।
जी कैसर इमाम साहब, अभी जो तस्वीर आपने और हमने देखी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी थे, जो दो रोज कबल क्वेटा में पुलिस लाइन्स में जो धमाका हुआ था जिसमें बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार और अफसरान मारे गए थे, तो उन्हीं की नमाज जनाजा में वो खुद भी मौजूद थे। तो क्या ये कोई तवक्को की जा सकती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इस वाक़े पर या इस तरह के दीगर वाक़ात पर जो इन दिनों रोनमा हुए आज खुद नोटिस लेंगे?
देखिए, अगर अदालत का काम यही है कि वो आज खुद नोटिस ले, तो उसका देखें प्रोसेस क्या होगा। आज खुद नोटिस लेने के बाद वो सिक्योरिटी एजेंसीज को बुलाएंगे कि बताओ कि तुमने अब तक क्या किया है। लेकिन यही बात जो है, ये हुकूमत भी तो उनसे पूछ सकती है। मैं समझता हूं कि दुनिया के बहुत से ममालिक में ये इल्जाम लगाया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान पर कि उसका अपनी एजेंसीज पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये बात जो है ये आज से नहीं है, ये जियाउल हक के जमाने से है। सो मेरे ख्याल में असल बात ये नहीं है कि अदालत जो है वो कोई सुमोटो ले और उसके बाद कोई फैसला हो। अदालत ने अपने तो उसके पास कोई ऐसे इख्तियार नहीं है, उसके पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इस चीज को रोके। इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए बहरहाल आपको सिक्योरिटी एजेंसीज का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जरूर इस बात की है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर कोई ग्रुप न हो, वो ग्रुप बिल्कुल ऐसे ना हो जो उनमें से कोई एक भी जो है वो इस किस्म के वाकयात के हक में हो या उसकी इमदाद कर रहा हो। क्योंकि इस किस्म के इल्जाम जो हैं वो आज से नहीं, 20 साल से लगाए जा रहे हैं कि बहुत सी सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं उन्होंने खुद दहशतगर्दों की तरबियत की है। मेरे ख्याल में ये बात जो है ये सही नहीं है कि अदालत को सू मोटो लेना चाहिए। असल बात यह है कि ताकतवर जो हुकूमत सियासी होती है उसको कोई काम करना चाहिए, ये उसके फराइज में शामिल है, और उसको चाहिए कि वो सिक्योरिटी एजेंसीज पर अपना कंट्रोल जो है वो मजबूत करे।
जी कैसर इमाम साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अभी जो कल का वाकया हुआ इस्लामाबाद में बारा को इमाम बारगाह या मस्जिद पर जो खुदकुश हमलावर मारा गया, उसके बारे में एजेंसियों का कहना है, कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि उसकी शनाख्त जकाल्ला के नाम से कर ली गई और उसके आबाई वतन जाकर उसके 3-4 भाइयों को हिरासत में भी ले लिया गया। शनाख्त हो गई, और अक्सर ये कहा जाता है कि शनाख्त हो गई फला हमलावर की, तो जब ये शनाख्त हो गई तो शनाख्त होने के बाद क्या असल मरकज तक आहनी हाथ हुकूमत का पहुंच सकता है?
मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। मेरे ख्याल में ये बात जो है ये यहीं फिनिश हो जाएगी। मैं समझता हूं कि इस किस्म के बहुत से वाकयात हैं, कभी वो कहते हैं उसका सर मिल गया, कभी कहते हैं कि उसकी उंगलियों के निशान मिल गए, कभी कहते हैं हर एक दहशतगर्दी के मौके पर इस किस्म के वाकयात बयानात जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन उनका नतीजा अब तक कोई नहीं निकला। किसी अदालत में किसी को पेश नहीं किया गया और किसी पर इल्जाम नहीं लगाया गया। ये तो कहा जा रहा है कि जो दहशतगर्द वहां मारा गया उसका खानदान जो है वो थोड़ा बहुत मजहबी रखता था ख्यालात जो ज्यादा इंतहा पसंदाना थे, लेकिन क्या ये बात जो है ये जुर्म के आ जाएगी और क्या उनके भाइयों पर या उसके बाप पर मुकदमा चलाया जा सकता है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। कानून में बेशुमार सुकुम है, कानून इतना कमजोर है कि वो अपने आप को किसी तरह से अमल पैरा कर ही नहीं सकता इन मामलात के बारे में। सो मेरे ख्याल में ये बात काफी नहीं है कि उसके बाप को या उसके भाइयों को पकड़ लिया गया और उसके लिए कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, इसलिए कि जिन लोगों ने यह काम किया है, मैंने जैसा पहले अर्ज किया 200 से ज्यादा ग्रुप हैं पाकिस्तान में। कोई उनमें सियासी वजह से कर रहा है, कोई मसलक की बिना पर कर रहा है, अकीदे की बिना पर कर रहा है, कोई किसी और वजह से फौजी लिहाज से कर रहा है, और फिर गैर मुल्की ताकतें जो हैं वो भी अपना अपना जोर लगा रही हैं। जिस वक्त मैं समझता हूं कि क्लैश ऑफ दी सिविलाइजेशन लिखी गई थी, उसके बाद ये बीज बो दिया गया है मुस्लिम मुल्कों के अंदर कि दहशतगर्दी जो है उसको आम किया जाए और उनको कमजोर किया जाए। वो कमजोर किए जा रहे हैं। और जिस वक्त बुश ने, सीनियर बुश ने ये कह दिया था कि जब कम्युनिज्म खत्म हो गया तो उसके बाद हमें कोई और दुश्मन दरकार है और वो दुश्मन इस्लाम से बेहतर नहीं हो सकता, तो मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी का बीज बो दिया गया था। और ये काफी नहीं है, जो हुकूमतें अमरीका के ताबे हैं उनके हुक्म की मुताबिक काम कर रही हैं, वो ये काम, वो इस दहशतगर्दी को नहीं रोक सकेंगी। दहशतगर्दी को रोकने के लिए सियासी विल पावर चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया कैसर माम साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तनवीर हुसैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप देखें कि क्वेटा में जिस तरह के वाकयात रोनमा हुए और जिस तरह से सिक्योरिटी अदारों को और अहलकारों को निशाना बनाया गया, इस तरह की जब वाकयात होते हैं, मसलन अभी पाराचनार में हुआ या किसी मस्जिद में होता, तो ये मगरबी जराइबला खास तौर पर ये हंगामा करते हैं कि पाकिस्तान में फिरकावाराना नौवियत का एक तरह का हमला हुआ, उसमें इतने जो है वो मुसलमान या शिया मुसलमान मारे गए। लेकिन अब जबकि सिक्योरिटी इदारों पर और सिक्योरिटी अहलकारों पर हमला हुआ, तो जिन्होंने हमला शिया मसाजिद या इमाम बारगाहों पर किया या करते हैं, उन्होंने ही पुलिस लाइन पर भी हमला किया, वही जिम्मेदारी उसकी भी लेते हैं और उन्होंने जिम्मेदारी इसकी भी ली, तो ये बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान में जो हमलावर दहशतगर्द अनासिर हैं वो मसलकी बुनियादों पर नहीं, किसी और बुनियाद पर, किसी की ईमा पर, किसी के कहने पर, यानी सुन्नी शिया को कोई मसला नहीं है, मसले की बुनियाद पर तो है ही, जाहिर है कि वो एक फिरके को शिया और काफिर कहते हैं, तो ये जो शिया और सुन्नी का मसला पाकिस्तान में इन ग्रोहों के हमले के तनाजुर में कहा जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं बल्कि ये एक दहशतगर्द ग्रोह है जो किसी और के कहने पर एक खास मसले को निशाना बनाता है और खास इदारों को निशाना बनाता है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंच रहा है?
देखिए जी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उन्हीं लोगों को पहुंच रहा है जो ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी तौर पे एक दूसरे के मसाजिद पे हमले किए जाते हैं, वो भी उसी का हिस्सा होता है कि कम अगर वो जो काम वो खुद कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो आग लगे मजहबी तौर पर, कि ये खुद मुल्क जो है डिस्टेबलाइज हो और ये तबाही की तरफ जाए और मुल्क के अंदर जो है जंग व जदल हो, वो उनकी एक साजिश का हिस्सा होता है। बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन हैं और पाकिस्तान के तमाम इदारों पे वो हमले करके अपना एक एहसास दिला रहे हैं कि हम इस मुल्क के अंदर जो चाहें वो करेंगे। और वो जो शरायत रखते हैं पाकिस्तान के, ये तालिबान की तरफ से जो आती रही है कि पाकिस्तान में ये जमहूरी निज़ाम नहीं चाहिए, वो सारा एक प्रेशर उस हवाले से भी इस मुल्क के अंदर डाल रहे हैं और इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और उसका जाहिर है फ़ायदा जो है वो अमेरिका और दूसरे उनके ममालिक को है, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टेबलाइज हो, पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाए और पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। और वो अपने, दूसरी बात यह है कि वो इसको डिस्टेबलाइज करके प्रेशर बिल्ड करके अपनी शरायत मनवाना चाहते हैं, खुसूसन इस रेफरेंस में कि जब वो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, नेटो फोर्सेस यहाँ से निकलना चाहती हैं और पाकिस्तान पे मुख्तलिफ तरीकों से दबाव भी डाला जाता है कि पाकिस्तान कभी तो तालिबान की मदद लेने के लिए और कभी दूसरी शरायत मनवाने के लिए वो इसके ऊपर दबाव डालते हैं। और मुल्क के अंदर इस वक्त भी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि जो गैर मुल्की एजेंसीज जो हैं, अगर वजीरिस्तान से कराची और कराची से इस्तंबुल तक जंगजू ले जा सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या नहीं इस मुल्क के अंदर कर सकते हैं। तो ये सारे मकासद जो है जिन उन ममालिक अमरीका और उसके आवारियों के मकासद हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करके अपनी मर्जी के मुताबिक इस मुल्क की खारजा पॉलिसी और इस मुल्क के अंदर अपनी मर्जी का निज़ाम लाना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान को चाइना से भी दूर किया जा सके किसी तरीके से और भारत के हवाले से भी, क्योंकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के हवाले से ये मौकफ है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है उसका जो भारत का रोल है उसको मिनिमाइज किया जाए, पाकिस्तान ने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान को रोल दिया जाए। लेकिन ये सारी सूरत हाल इस हवाले से पैदा की जा रही है कि पाकिस्तान को प्रेशर में रखा जाए और कम से कम जो है इसके इसके जो मुतालबात हैं या शरायत हैं वो पाकिस्तान की पूरी की जाए और अपनी ज़्यादा पूरी करवाई जा सके।
जी तनवीर हुसैन साहब, पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अदालतें दहशतगर्दों को सिर्फ इस बिना पर ये कहकर बरी कर देती हैं कि इनके खिलाफ इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, अभी ये कोयटा का वाकया जिसमें पुलिस एहलकार अफसरान मारे गए, इसमें भी कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल की। इससे पहले लश्कर जंगवी और उसके सरगनाओं ने बारहा यह कहा है कि फला वाकये चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का हो चाहे कोयटा का हो, यानी कोयटा में जो माजी में वाकयात हुए हैं, ये कहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं। तो जब खुद आदमी एतराफ़ी जुर्म कर रहा है तो क्या इससे बड़ा कोई सबूत और हो सकता है?
देखिए, यही तो सवाल है जो सोचने का है कि जो तालिबान का है फौरन वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं, इसके साथ साथ लश्कर जंग भी फौरन जिम्मेदारी कबूल करता है जो जो वाकयात हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो भी जिम्मेदारियाँ कबूल करती है। बात यह है कि ये फिर इस नुक्ते की तरफ आती है कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि जो एजेंसियाँ जो तंजीमें वाज़ तौर पर ये जिम्मेदारी कबूल करती है उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए, क्रैकडाउन होना चाहिए, ना कि उनकी खबर जो है अखबारात के सफ़े अव्वल पे बड़ी सुर्खी के साथ आए कि जी इस सारे वाक़े की फलाने जिम्मेदारी कबूल की। जब दुश्मन सामने है तो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। अब लोग तो खुद ये सवाल करते हैं, आम महफलों में भी ये बात होती है कि जी सारे लोग इतनी दलेरी से ये कर रहे हैं तो हुकूमत को कोई इसके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए। अब एक्शन ना लेना एक सवालिया निशान है कि क्या हुकूमत का मौकफ इस हवाले से कुछ वाजे नहीं है, वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते या उनके बस से बाहर हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज के से बाहर हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो काफी परेशान कुन है। दुश्मन क्लियर कट है, वो अलानिया तौर पर ये सारी वारदातें कर रहे हैं और ये हमारी एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ एक वाजे हिकमत अमली अपनाए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा इस मुल्क के आवाम को एक तहफ़ मिल सके।
जी, मैंने जो सवाल किया था वो अदालतों के ताल्लुक से किया था कि अदालतें ये कह के छोड़ देती हैं कि इनके खिलाफ काफ़ी सबूत नहीं है जबकि एतराफ़ जुर्म खुद करते हैं लोग।
देखें, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसमें यह है कि जो लोग जिस सतह का एक एएसआई होता है या बाज़ुकात सब इंस्पेक्टर होता है जो इसकी तफ्तीश कर रहे होते हैं, अब होता यह है कि जो लोग गवाह होते हैं वो उनको तहफ़ का एक बड़ा मसला होता है। अगर कोई बंदा गवाही के लिए तैयार होता है तो जाहिर है जो तालिबान आके शहर के अंदर आके बंदूकें ले के मस्जिद के बाहर खड़े होकर चारों तरफ से फायरिंग करते हैं, अब उस गवाह के लिए तो आप तहफ़ तो नहीं दे सकते ना। पाकिस्तान में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ने इनके खिलाफ जब लश्कर जंगवी या इनके खिलाफ कोशिशें की, इनके करीब पहुँचे तो उनको मार दिया गया। अब जब गवाह नहीं होंगे तो अदालत तो है वो तो सबूत और शहादत की बुनियाद पे फैसले करती है ना, जज तो मौके पे मौजूद नहीं होता। तो जब तक इस सुकम को दूर नहीं किया जाता, जिस तरह कैसर इमाम साहब ने कहा कि एक कानून ऐसा होना चाहिए कि इनके खिलाफ जो भी मवाद हो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का या कोई रिकॉर्डिंग का या जो भी विजुअल्स का या किसी भी हवाले से उसको काफ़ी समझा जाए और इन लोगों के खिलाफ जो है सजाएं दी जा सके। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एतराफ किया हुआ है लेकिन बाद में वो अदालतों से निकल के हैं और अब तो सूरत हाल ये है कि अगर आप जेल के अंदर हैं, आप बनू जेल का वाकया देखें डीआई खान का, तो वहाँ से आप तो वो छुड़ा के लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तो कोई भी शख्स जो है वो गवाही देने के लिए इनके खिलाफ अदालत में नहीं आएगा, इसलिए कि उसको जान का खतरा होता है और अदालतें जो हैं बगैर शहादत और सबूत के किसी को सजा नहीं दे सकती।
आखिरी सवाल आपसे कहना चाहूँगा तनवीर साहब, जब इलेक्शन हो रहे थे जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि कुछ जमातें ऐसी हैं जिनके सिलसिले में तालिबान के दिलों में नर्म गोशा है, यानी ये जो मौजूदा हुकूमत जिस जमात की ये हुकूमत है उसके बारे में भी एक बात ये कही जा रही थी, लेकिन देखा यह गया है कि नवाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने के बाद ना सिर्फ ये कि तालिबान के इकदाम कम नहीं हुए बल्कि उसमें शिद्दत आ गई है, तो आप क्या कहेंगे जो ये एक तस्वूर पहले पाया जा रहा था?
देखें, नरमी का जो सवाल था वो ये था कि लग ही रहा था कि शायद कुछ मुज़ाकरात के ज़रिए कोई इनकी कार्रवाइयों को रोका जा सकेगा और लोगों ने वोट भी शायद इस वजह से भी दिए कि मुस्लिम लीग नून और इमरान खान का ये मौका था।
तनवीर साहब माफ कीजिएगा, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका, हमारे साथ ने भी इत्तला दी है, पहले हमारे पास वक्त कुछ ज़्यादा था लेकिन किसी मजबूरी की वजह से कम हो गया। बहरहाल हम आपसे माजरत चाहते हैं और अपने नाज़रीन से भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।